शांति। आखिर वो दिन आया आज, सबको इंतजार था उषा दीदी की क्लास कब है रहेगी क्या, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज उषा दीदी हमारे सम्मुख है और हम उनसे क्लास करेंगे, क्योंकि दीदी जी अभी बाहर गए हुए थे सेवाओं के लिए, लेकिन दो दिन पहले ही पहुंचे हैं और आज क्लास कराने हमारे बीच में आ चुके हैं। हम आदरणीय उषा दीदी जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उषा दीदी जी का लौकिक जन्म अफ्रीका में हुआ। 1980 में बहुत अल्प आयु में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में संसार में आध्यात्मिक जागृति हेतु संपूर्ण रूप से समर्पित कर लिया। अनेक कंपनीज इंडस्ट्रीज में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के कोर्सेज आप कराते रहते हैं। बाबा से विशेष आपको वीआईपी सेवा का जैसे वरदान है। अभी भारत के अनेक कोनों में गीता ज्ञान रहस्य आध्यात्मिक रीति से उसको बहुत सुंदर तरीके से बाबा के ज्ञान से जोड़कर अनेक आत्माओं तक वो सच्चा गीता ज्ञान और सच्चे गीता के भगवान से आप जोड़ने का विशेष कार्य कर रहे हैं। और मधुबन में भी जो भी ब्राह्मण बच्चों की क्लासेस चलती है वो पावरफुल क्लासेस आप कराते रहते हैं। साथ ही साथ जो नए भाई बहने आते हैं उनको राजयोग शिविर करा के यथार्थ शिव बाबा का परिचय आप देते हैं। ऐसे विशेषताओं के धनी आदरणीय उषा दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। स्वयं का प्रबंधन, रामायण का यथार्थ, गीता की गुह्यता, आपसे चरितार्थ, योग शिविर प्रणेता, भगवानुवाच की पार्थ, आपकी सरल ज्ञान वर्षा से होते श्रोतागण यथार्थ, होते श्रोतागण यथार्थ। इतना स्पष्ट सरल ज्ञान आप बाबा का अनेक आत्माओं तक पहुंचाते हैं। और आज विशेष भट्टी में भी एक बहुत सुंदर विषय पर आज आदरणीय दीदी जी हमें क्लास कराने वाले हैं, सकाश के क्या क्या प्रकार और कितने प्रकार हो सकते हैं। अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। बाप दादा, हम सभी बच्चों को समय के नाजुकता का इशारा देते हैं और ये इशारा देते हुए हमें ये भी प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अब समय अनुसार या समय प्रमाण सकाश देने की सेवा करनी है, वाइब्रेशन देने की सेवा करनी है या मनसा द्वारा वायुमंडल को पावरफुल करने की सेवा करनी है। सकाश, वाइब्रेशंस और मनसा द्वारा टोटल वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह से आने वाला समय नाजुकता की ओर जा रहा है तो उसमें यही सेवा काम आएगी। लेकिन ये सेवा के लिए पहले हमें अपने आप को बहुत सशक्त करना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, अनेक प्रकार के खजानों से, शक्तियों के खजानों से स्वयं को संपन्न करना होगा। साथ ही साथ फुल स्टॉप के द्वारा फुल स्टॉक अंदर में जमा करना होगा, क्योंकि जो जमा करते भी है लेकिन अगर फुल स्टॉप लगाने की विधि नहीं आती है तो वो सारा स्टॉक धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है और ड्रेन होते होते पता भी नहीं चलता है कि कब हम भीतर से खाली भी हो गए। और इसीलिए जब फिर समय आता है तो खुद भी हम हलचल में आ जाते हैं। लेकिन अब बाबा कहे कि हमारे अंदर की शक्तिशाली स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जिस कारण से भीतर कोई भी प्रकार की हलचल न हो, इतना अंदर से स्वयं को फुल करना है। आने वाले समय में तभी हम दूसरों को जिस रूप में वो सहयोग चाहते हैं उस रूप से हम सहयोगी बन सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को पिछले संडे की मुरली में ही सकाश के विभिन्न तरीके बताए कि कितने रूप से हम सकाश दे सकते हैं। तो पहला तरीका जो बाबा ने सकाश देने का बताया कि बाबा ने कहा अपना अंतिम स्वरूप सामने इमर्ज करो। ब्राह्मण जीवन का फाइनल स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का फाइनल स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है और इसीलिए जब फाइनल स्वरूप हमारा फरिश्ता स्वरूप है तो ये अंतिम स्वरूप को हमें इमर्ज करते जाना है, क्योंकि यही अंतिम स्वरूप का, अंतिम समय की पावरफुल स्थिति का जो स्वरूप होगा यही हमारे लिए अंतवाहक साधन बन जाएगा, अंतर्वाहन हो जाएगा, जिस वाहन के माध्यम से हम चक्कर लगा सकेंगे और चक्कर लगाते हुए जिस आत्मा को जो चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, वो हम दे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहे ये फरिश्ता स्वरूप, ये अंतवाहक स्वरूप, ये अंतिम समय वाला स्वरूप हमारा अब जितना ज्यादा हो सके उसको इमर्ज करते जाना है और इमर्ज करते हुए हर आत्मा के प्रति वो सकाश देने का कार्य करना है, चक्कर लगाना है। फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से ही चक्कर लगा सकेंगे। तो एक तरीका है सकाश देने का जिसमें खुद चक्कर लगा करके सकाश देना। दूर दूर आत्माएं कहां कैसी स्थिति में होंगी, पुकार रही होगी, तो ऐसे समय में बाबा कहे हमें सूक्ष्म स्वरूप द्वारा वहां ट्रैवल करते हुए उन आत्माओं को वो सकाश, वो शक्ति, वो खुशी, आनंद देते हुए आना है। तभी वो कहेंगे कि शक्तियां आ गई। और शक्तियां आ गई ये अगर स्पष्ट हुआ तो शक्तियों के ऊपर सर्वशक्तिमान वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हमारे इस स्वरूप के द्वारा ही सर्वशक्तिमान बाबा स्पष्ट होगा दुनिया के सामने। तो ये पहला तरीका बाबा ने बताया। दूसरा तरीका बाबा ने बताया कि जहां बाबा ने साकार बाबा का स्वयं का अनुभव बताया कि जब कभी समय या लहर ऐसी होती थी, दुनिया में कोई ना कोई घटनाएं घटती थी उस वक्त भी, बाबा के समय भी, और जब ऐसी लहर होती थी तो बाबा रात रात जाग करके भी सकाश देता था। तो चक्कर लगाना नहीं, लेकिन एक स्थान पर बैठ करके, जिसको बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। यह दूसरा तरीका कि जैसे लाइट हाउस अपनी शक्ति चारों ओर फैलाता है, मार्गदर्शन देता है राह भटके हुए को, अपनी लाइट और माइट की पावर दूर तक हम फैलाएं, तो लाइट हाउस माइट हाउस बन करके उसको चारों ओर जैसे फैलाते जाना है, महसूस कराना है उनको, अनुभव कराना है। तो ये दूसरा तरीका बाबा ने अपने अनुभव के आधार से बताया कि बच्चे लाइट और माइट जिसमें रहम दिल बन करके, और रहम दिल के साथ साथ जैसे अनेक आत्माओं के प्रति देना है देना है देना है, ये भाव को जागृत करना है। लेने की कामना नहीं रखनी है, लेकिन जितना हो सके मुझे देना है, और जितना हम देते जाएंगे देने में ही लेना समाया हुआ है। क्योंकि जब हम देंगे तो अनेक आत्माओं की भी उस वक्त दुआएं प्राप्त होगी, तो देने में लेना हो गया। जितना हम दूसरों को वो शक्ति प्रदान करेंगे लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति द्वारा, उतना ही उनको जो राहत मिलेगी, अंदर सुकून मिलेगा, तो उनके सुकून ही हमारे लिए वरदान का कार्य करेगा। वो ऑटोमेटिकली हमें उनका सुकून जैसे हमारे लिए वरदान बन गया। इसलिए पहली स्थिति में हमें चक्कर लगाना है, लेकिन दूसरी स्थिति है जिसमें हम फिक्स है, लाइट हाउस जैसे फिक्स है। समुद्र में लाइट हाउस होता है, दूर दूर तक की जो भटकी हुई नावे होती है उनको रास्ता दिखाती है अपने लाइट और माइट की किरणों से। तो ऐसे ही बाबा कहे चारों ओर अपनी लाइट फैलाते जाओ एक ही स्थान पर स्थित होकर के, यह दूसरा तरीका है जिससे उनको ऐसी शक्ति अंदर मिले। और रहम दिल बनकर के जब हम उनको देने का कार्य करते हैं तब वो आत्माएं भी महसूस करेंगे कि ये शक्ति हमें कहां से मिल रही है, कौन दे रहा है, किस तरफ से आ रही है ये शक्ति, ये महसूस करेंगे। और तब अंदर से वो दुआएं देते जाएंगे। तो देने में ही लेना समाया हुआ है। तीसरा स्टेज है, तरीका है देने का, जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाओ। ये तीसरा तरीका कि अव्यक्त वतन में आ जाओ और बाबा के साथ बैठ जाओ। और उस समय बेहद की सेवा पूरे विश्व के पर जैसे अपनी किरणें फैलानी है। ये तीसरा तरीका है कि अव्यक्त वतन से पूरे पृथ्वी के ऊपर जैसे ग्लोब के ऊपर हम सारी शक्तियां दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तो बेहद की सेवा में अपने आप को लगाना है। ये बेहद की सेवा हो गई, पूरे वर्ल्ड की, पूरे ग्लोब की सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा करने के लिए जो आवश्यकता है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये बेहद की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं मेरा, है ना? जब ये समझेंगे मेरा कुछ नहीं और एकदम डिटैच हो जाएंगे, तो जितना डिटैच होंगे उतना अनेक आत्माओं तक वो शक्ति को पहुंचा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अव्यक्त वतन में आ जाओ, और अव्यक्त वतन में बेहद की स्थिति में स्थित होकर के बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए जैसे हम देने का कार्य कर रहे हैं, जहां कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है और साथ ही साथ देना है, तो डिटैचमेंट की स्थिति से जितना हम देंगे उतना उन आत्माओं तक भी विशेष पहुंचेगा। जैसे दूसरी स्टेज में जब कहा लाइट एंड माइट हाउस वाली, तो उसमें क्या होता था कि जैसे बाबा ने कहा, साकार बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब कोई ऐसी विशेष लहर, भाई कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो, तो विशेष उन आत्माओं को जैसे टारगेट करते हुए उनको शक्ति सकाश देते, क्योंकि उस समय आत्माएं उस परिस्थिति को फेस नहीं कर सकती है, इसलिए उस समय उन आत्माओं को विशेष हम दे रहे हैं। लेकिन तीसरी स्टेज में अव्यक्त वतन में पूरे ग्लोब को दे रहे, तो उस समय बेहद की स्थिति चाहिए, सबको दे रहे हैं, है ना? और जो आत्माएं उसको लेना चाहे वो जैसे अपने आप में लेती जाए। तो किसी को खास इमर्ज करके नहीं, बेहद की स्थिति में, जबकि दूसरी स्थिति में जब ऐसी कोई लहर होती है, ऐसी कोई घटना होती है और उस समय हम लाइट हाउस माइट हाउस बन करके देते हैं, तो उस वक्त हम साक्षी हो जाते हैं, उन आत्माओं के साथ हमारा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये स्टेज भी बहुत जरूरी है साक्षी की अवस्था। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था कि अंतिम समय ये साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे, तो जो देने का कार्य करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब लाइट हाउस माइट हाउस बन करके हम देते हैं तो उस वक्त साक्षी दृष्टा की स्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि जब साक्षी दृष्टा हो करके तो डिटैच हो गए हैं, उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे कभी कभी कहीं से समाचार आया गया कि फलानी जगह ऐसा हो रहा है, तो वहां पर खास टारगेट करके वहां पर हम दे रहे हैं, तो यह दूसरा तरीका है सकाश ने। लेकिन तीसरा बेहद विशालता, बेहद माना हृदय की विशालता, इतना हृदय विशाल हमारा हो जाए कि जिसके अंदर जैसे सारी दुनिया के समाने की जगह है, इतना अपना हृदय विशाल कर दो और इतनी उन आत्माओं के प्रति एक बेहद की भावना रखते हुए जैसे सर्व खजाना देना है किसी को कौन सा खजाना, किसी को कौन सा खजाना हम दे रहे हैं, कभी कौन सा खजाना दे रहे हैं, कभी कौन सा खजाना दे रहे हैं, है ना। ये नहीं उस समय आता है कि भाई हम अगर देते जाएंगे हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जितना देते जाएंगे उतना बाबा भरता जाएगा, देने में ही तो लेना है। तो इसीलिए ये तीसरा तरीका है सकाश देने का। चौथा तरीका जो बाबा ने बताया कि जिसमें कल्प वृक्ष के तने में बैठ जाओ, विजुलाइज ये करो कि मैं तने में हूं और ये कल्प वृक्ष परमधाम में उल्टा वृक्ष है, तो यहां से देने के बजाय ऊपर परमधाम में चले जाओ, वहां से तने से वृक्ष को मिलना सहज हो जाएगा। उस तने में बैठना ज्यादा सहज है यहां के तने में बैठने से, क्योंकि जब उल्टे वृक्ष में परमधाम में बैठते हैं तो बीज के साथ मैं भी बीज हूं, और जब तने में बैठ गए तो तने से, जैसे उस बीज से तने के द्वारा सारे पत्ते पत्ते को मिल रही है सकाश शक्ति, मिल रही है पोषण, मिल रहा है। तने में बैठने का मतलब है उन आत्माओं को भी हमें पोषण देना है, सकाश माना पोषण देना, क्योंकि हर आत्मा कमजोर हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। तो जब मैं बाबा के साथ बीज बन करके बैठती हूं तो बाबा बीज से मुझ तने के द्वारा उन पत्ते पत्ते तक पहुंच रहा है, तो वहां से देना सहज हो जाएगा। अगर कल्प वृक्ष के तने में यहां बैठेंगे तो शायद पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीज से कैसे लेना साकार में और फिर पहुंचाना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन परमधाम में यही वृक्ष उल्टा वृक्ष है, और इसलिए वहां बीज के साथ मैं भी बीज, तो बीज के साथ बीज बैठना और बीज से सकाश जैसे मुझ द्वारा पास हो रही है सारे वृक्ष तक, हर एक टहनी तक, हर एक पत्ते तक पहुंच रही है, और इसी तरह ये वृक्ष को हम पोषण देते हुए उन्हें शक्तिशाली बना रहे हैं, तो ये इजी हो जाएगा। तो ये चौथा तरीका है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि परमधाम में बीज के साथ मैं बीज रूप होकर के बैठना माना उसके लिए फुल स्टॉक मेरे पास जमा हो, तो बाबा से ले रहे हैं और दे रहे हैं, जा रहा है। तो इसीलिए मेरी बुद्धि उस समय और कोई संकल्प विकल्प में नहीं जाती है, लेकिन जब बीज रूप बन करके दे रहे हैं तो वो प्योर फॉर्म में जैसे जा रहा है, उस तने से लेकर के वृक्ष के पत्ते पत्ते तक वो पोषण जा रहा है, वो सकाश जा रही है, शक्ति जा रही है। क्योंकि बाबा कहे हर एक ताल तालियां भी बहुत कमजोर हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, और इसलिए वो पुकार रहे हैं। तो इसीलिए जब थोड़ी समय के लिए भी उनको ये पोषण मिल जाता है तो राहत महसूस करेंगे कि कहीं से तो पोषण आ रहा है, ये फील करेंगे वो भी, क्योंकि बीज स्वरूप में जब हम आत्माओं को भी देखेंगे तो ये जो उल्टा वृक्ष का जो झाड़ है उसमें भी हमें हर आत्मा बीज रूप में ही दिखाई देंगी, तो एक एक बीज को पहुंचाना जैसे सहज हो जाएगा। और बड़ी खुशी होगी उसमें पहुंचाने में। तो ये चौथा तरीका बताया। पांचवा तरीका जो बाबा ने बताया कि बच्चे अपनी मनसा को इतनी पावरफुल बनाओ कि कांस्टेंट उसमें से शुभ भावना, शुभ कामना जनरेट होती रहे। ये पांचवा तरीका है। शुभ भावना, शुभ कामना पहुंचती रहे। जब हम किसी भी आत्मा के लिए सहज भाव से भी शुभ भावना, शुभ कामना फैलाते हैं, दे रहे हैं शुभ भावना, कोई कैसा भी भाव वाली आत्मा है, नेगेटिव भाव वाली हो, लेकिन उसके प्रति भी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है, तो ये भी सकाश का ही काम करता है। ये फीलिंग्स है, वाइब्रेशंस है। शुभ भावना, शुभ कामना, यही तो वाइब्रेशंस के द्वारा सकाश पहुंचाना है। लेकिन उसके लिए मन का मौन ज्यादा चाहिए। इसीलिए बाबा ने उस वक्त कहा कि जिस तरह से दिन भर में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ठीक इसी तरह विशेष प्रोग्राम अर्थ, कोई कार्य अर्थ, संगठित रूप में मन के मौन का प्रोग्राम बनाओ। और मन के मौन का प्रोग्राम के व्यर्थ संकल्प ना के बराबर चले। अगर कोई व्यर्थ संकल्प आया भी, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यर्थ संकल्प भी आया तो तुरंत उसको चेंज करना आना चाहिए। तो मन के मौन से अंदर में इतनी शक्ति जमा होगी और तब ये वाइब्रेशंस का, ये फीलिंग्स के द्वारा, ये भावनाओं के द्वारा हम अनेक आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। मन के मौन के लिए बाबा ने अभ्यास जो बताया, अभ्यास बताया कि बच्चे हो सके एकांतवासी बनो, एक के अंत में समा जाओ। ये अभ्यास जितना होगा तब मन का मौन सहज हो जाएगा और तब ये शुभ भावना, शुभ कामना देने का कार्य सरलता, सहजता से आगे बढ़ेगा। शुभ भावना के लिए शुद्ध संकल्प का खजाना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने कहा जब एकांतवासी बनो और अपने पास जो भी खजाने हैं उसकी इकोनॉमी करो, और इकोनॉमी करते हुए हर एक के प्रति मेरी शुभ भावना फैले, तो वो ड्रेन नहीं होनी चाहिए बीच में व्यर्थ के रूप में। व्यर्थ जैसे चला माना ड्रेन हो, ड्रेनेज शुरू हो गया, वो आत्माओं तक नहीं पहुंच रही है लेकिन वो जैसे बीच में ही लीकेज हो गया है। इसलिए लीकेज नहीं होना चाहिए। तब बाबा ने कहा ये शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा सकाश देने का कार्य सहज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अटेंशन, मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, और उसके लिए बीच बीच में अभ्यास करना जरूरी है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के समय, जब ट्रैफिक कंट्रोल में खड़े हो जाते तो उस समय मन का मौन, शांत करो अपने मन को। बीच बीच में जितना मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से अपने मन का मौन फुल स्टॉप लगाने की आदत जिसको होगी, ये प्रैक्टिस जितना बढ़ाएंगे उतना ये शुभ भावना, शुभ कामना से सहज कर पाएंगे। क्योंकि आत्माएं अभी दुख की हालत में है तो पुकार रही है ना, तो इसीलिए उनको ये भी एक सपोर्ट प्राप्त हो जाता है। शुभ भावना शुभ कामना से उनको जैसे आथत मिलती है, इसलिए ये भी सकाश ही है। और छठा तरीका जो बाबा ने बताया, जो बाबा ने कहा कि आज साइंस दान भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा सुख का साधन निकाले जो किसी को दुख न मिले, लेकिन ये तो होना नहीं है। उनके हर सुख के साधन में दुख समाया हुआ ही है। तो ऐसे वक्त में साइंस दान की बुद्धि को चेंज करने के लिए कौन सी पावर चाहिए? साइलेंस पावर चाहिए। तो छठा तरीका है जो बाबा ने कहा, साइलेंस का टावर बन जाओ। टावर कितना ऊंचा होता है? लाइट हाउस से 10 गुना ऊंचा टावर होता है। एफिल टावर पर चढ़ते हैं ना जब लोग, वहां से कितना बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो लाइट हाउस एक स्थान पर फोकस करता है, राह बताने का कार्य करता है, लेकिन जो टावर होता है वो चारों ओर उसके शक्ति फैलाता है। तो यहां जब टावर बनते हैं तो साइलेंस, क्योंकि दुखी आत्माएं उस वक्त शांति चाहती है, दुख से राहत पाने के लिए उस वक्त उनको शांति चाहिए। तो ये छठा तरीका कि ऐसी आत्माएं जो साइंस के साधनों से अब तंग होती जा रही है, परेशान होती जा रही है, सुख के बदले में वो सुख भी उनका दुख में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे समय पर जब आप टावर बन जाएंगे, शांति के टावर, यानी जैसे खुद शांति स्तंभ बन जाए, खुद शांति स्तंभ बन करके अनेकों को शांति की किरणें, शांति के वाइब्रेशन, लाइट माइट के वाइब्रेशन अलग है, तने द्वारा पोषण देना वो अलग है, शुभ भावना शुभ कामना की फीलिंग्स देना अलग है, और साइलेंस की सकाश देना अलग है। इसीलिए जो बाबा की मुरली के अंदर ये 6 प्रकार के सकाश बताए बाबा ने, ये हर कोई नहीं, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हर बार जब बाबा कहते सकाश दो, बाबा से सकाश लो, बाबा से सका, बाबा सकाश दे रहा है, लेते जाओ और देते जाओ, तो कैसे देना होता है? ये 6 विधि है देने की। लेकिन उसने बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब आप जो भी तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाने के साथ साथ अगर संगठन में अपनाया जाए तो उसका इफेक्ट बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए जैसे भाई सकाश ग्रुप है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपना अपना कर रहा है, कोई शुभ भावना दे रहा है, कोई लाइट हाउस बन रहा है, कोई फरिश्ता बन, तो स्कैटर्ड हो गया। लेकिन अगर हम सब मिलकर के एक ही संकल्प में कि भाई आज का दिन हमें साइलेंस का टावर बन जाना है, या आज का दिन हम सब मिलकर के शुभ भावना शुभ कामना से सकाश देंगे, या हम सब मिलकर के आज तने में बैठ जाएंगे और हर एक पत्ते तक हर एक, तो वो जो संगठित रूप का इफेक्ट है वो बहुत अधिक कार्य करेगा, रिजल्ट दिखाई देगा। हर एक छोटा छोटा रूप में अपनी अपनी रीति से सकाश देंगे तो वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने ये बात कही कि जिस तरह से कोई दिन विशेष आप नियुक्त करते हैं, भट्टी के हिसाब से नियुक्त करें कि भाई आज भट्टी है, लेकिन भट्टी के साथ साथ ये भी संकल्प नियुक्त कर दें कि आज अगर सकाश का स्वरूप हमारा कौन सा होना चाहिए, तो संगठित रूप में आज हम फरिश्ता बनकर के सकाश देंगे। तो सारे अगर संगठित रूप में फरिश्ता हो जाए, सारे अगर संगठित रूप में लाइट हाउस बन जाए, तो उसकी लाइट कितनी होगी, उसकी माइट कितनी होगी। ये प्रयोग विशेष करना है। इसलिए बाबा कहे कि जब आप लोग संगठित रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे, तब उसका रिजल्ट जो दिखाई देगा वो बहुत पावरफुल, कई गुना अधिक हो करके उसका रिजल्ट हमें महसूस होगा। क्योंकि एक व्यक्ति की शक्ति और संगठन में अगर 200 है तो 200 की पावर, तो 200 का पावर कितना होगा, 200 का पावर बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए ऐसे बाबा कहे कि आप सभी मिल करके इस तरह से संगठित रूप में इकट्ठे हो करके जब ऐसे सकाश फैलाएंगे, तब वो इफेक्ट जो होगी उसका अनुभव खुद को भी होगा, क्योंकि देने में ही लेना है, तो खुद को भी महसूस होगा, और जब दे रहे हैं तो अनेक आत्माओं तक वो पहुंचेगा, तो उसका जो इफेक्ट है इतना दूर तक जाएगा, जो यहां तक जा रहा था वो 10 गुना अधिक पर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के हिसाब से अब आवश्यकता है सकाश देने की सेवा, वाइब्रेशन द्वारा सेवा, और मनसा को पावरफुल बनाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा। तो चाहे एक सेंटर के वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, चाहे टोटल एक यज्ञ के वातावरण को पावरफुल बनाना है, चाहे अपने घर के वातावरण को भी पावरफुल बनाना है, लेकिन तब भी हम इस बेहद की सेवा में जब अपने आप को जोड़ देते हैं, तो बेहद की सेवा में जुड़ जाने से वो बेहद तक फैलती है, और बेहद तक ऐसी फैलेगी जो ऐसा महसूस होगा कि बस ये बात पहले हमें क्यों नहीं पता थी, ये तो पहले से ही करना चाहिए था। और उसमें अपने अंदर भी इतना बल भरेगा, इतना बल भरेगा, जो खुद भी देते देते खुद भी पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज ऐसी है जो देने से खुटने वाली नहीं है, जितना देंगे उतना बढ़ेगी, इसलिए खुद भी इतने पावरफुल होते जाएंगे। क्योंकि संगठन का जो प्रभाव है वो एक दूसरे को भी मदद करने लगता है। तो जब संगठित रूप में हम बैठते हैं, अकेले बैठेंगे योग करने में तो व्यर्थ चलने की मार्जिन है, इधर उधर बुद्धि योग भटकने की मार्जिन है, लेकिन संगठित एक ही संकल्प में जब बैठेंगे तो उस वक्त सपोर्ट मिल जाता है संगठन का भी। इसीलिए बाबा कहे संगठित रूप में जब आप करते हैं तो उसका प्रभाव खुद को भी, जैसे एक सपोर्ट मिल गया तो पावरफुल हो गए, हमारी जड़े इतनी पावरफुल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, और जड़े जब कनेक्ट हो जाती है तो वो तना कितना पावरफुल हो जाएगा, वो तना कितना शक्तिशाली हो जाएगा, तो उस तने से एक एक पत्ते तक पहुंचाना वो पोषण जैसे बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 तरीके हैं सकाश देने के। कौन से? सबसे पहले फरिश्ता बन जाओ। अंतिम स्थिति, अंतिम स्वरूप यही अंतर वाहन है, और इस वाहन में बैठकर चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाते हुए जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि नमः शाम के समय जब हम चक्कर लगाते भक्तों के पास, भक्त लोग मंदिर में कितने घंटे बजा रहे हैं, देवी देवताओं को पुकार रहे हैं, तो ये अंतर वाहन के द्वारा उनके पास चक्कर लगाना है और उनको सकाश देनी है, शक्ति
शक्ति देनी है, खुशी देनी है। फिर दूसरा स्वरूप लाइट हाउस, माइट हाउस, लेकिन उसके लिए साक्षी दृष्टा की स्थिति। जितना साक्षी दृष्टा होकर के उस स्थिति में स्थित होकर के लाइट और माइट की किरणें देनी है, लाइट को प्रवाहित करना है। जैसे दूर दूर तक वो लाइट जा रही है, दूर दूर तक वो माइट जा रही है, और साक्षी दृष्टा होगा तो उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़े। तो कोई टारगेट को लेकर के जब कहीं पर कोई घटना होती है, कोई ऐसी आवश्यकता होती है, तो उस समय जैसे लाइट हाउस माइट हाउस बन करके उसी स्थान को हम फोकस दे रहे हैं, है ना, रेडिएशन दे रहे हैं, ताकि वो आत्माओं को राहत महसूस हो और उनके दुख दर्द का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। उससे हम न्यारे होकर के उनको दे रहे हैं। फिर तीसरा अव्यक्त वतन में चले जाओ, और वतन में जाकर के बेहद पूरे ग्लोब को दे रहे हैं। बेहद की स्थिति, बेहद की अवस्था, हद की नहीं, बेहद सारे विश्व के लिए है। खाली मेरे सेंटर के लिए, मेरे उसके लिए नहीं, बेहद। और उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। वैराग्य जितना होगा उतना वतन में बाबा के साथ बैठ करके जैसे हम सबको दे सकेंगे। ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका, कल्प वृक्ष के तने में बैठ जाओ और तने में बैठ करके पोषण देना है, खजाना अपना पहुंचाना है। और जब संगठित रूप में विशेष परम धाम में, अव्यक्त वतन से भी ऊपर परम धाम में जाकर के उस उल्टे वृक्ष में बीज के साथ बीज रूप होकर के बैठ करके बीज से ही वो सकाश लेकर के, वो पोषण लेकर के पत्ते पत्ते तक पहुंचाना है, सारे बीज आत्माओं को पहुंचाना है, है ना। और पांचवा, शुभ भावना, शुभ कामना, और उसके लिए मन का मौन का अभ्यास। जिस दिन शुभ भावना शुभ कामना से करना है उस दिन मन के मौन का अभ्यास होना चाहिए। साथ ही साथ एकांतवासी बैठ करके खजाने को इकोनॉमी से प्रवाहित होने देना है, और उस समय वृत्ति द्वारा वायुमंडल क्रिएट होता है। हमारी वृत्ति इतनी ऊंची हो जाती है और उस वृत्ति के द्वारा वायुमंडल पूरा बनने लगता है। और छठा, साइंस दान जो सुख के साधन बनाने के प्रयत्न में लगे, सोचते हैं मनुष्य को कभी कोई प्रकार का दुख न हो, लेकिन इतना वो दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे समय में साइंस वालों के सामने साइलेंस पावर बहुत बड़ी है, इसलिए साइलेंस के टावर बन जाओ। और जब टावर बन जाएंगे तो उन साइंस दान वालों को भी क्या करेंगे आप, सकाश दे सकेंगे, है ना, शक्ति दे सकेंगे, अपना पावर दे सकेंगे। तो ये साइलेंस पावर एक शांति स्तंभ ऐसा बन जाए साक्षात हम, जो उन आत्माओं को भी, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, कितना भी कोशिश करते हैं ऐसे साधन बनाए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए, ऐसी चीजें बनाए जो कभी व्यक्ति को दुख न हो, लेकिन जब वो दुख में ही परिवर्तित हो रहा है तो परेशान तो हो ही जाएगी ना। तो इसीलिए जब साइलेंस का टावर बन जाएंगे और उस साइलेंस के वाइब्रेशंस जितने हम उनको देंगे तो उतना वो भी अंदर में शांति का अनुभव, उनकी परेशानी धीरे धीरे कम होगी। तो ये छह तरीके हैं, ठीक है। तभी बैठे सब मिल करके, हाँ, एक ही शांति के जैसे वाइब्रेशंस, तो जो पहले मन का मौन का अभ्यास हमारा होता है तो वो मन का मौन का अभ्यास इसमें भी काम करता है। वो शुभ भावना गुड फीलिंग्स दे रहे हैं लेकिन यहां सिर्फ साइलेंस शांति का दान दे रहे हैं, शांति पहुंचा रहे हैं, है ना। नहीं मना, ये सारे छह के छह जो है संगठित रूप में करना है। जो भी करे हम उस दिन, जैसे सेंटर पर भी हम योग का प्रोग्राम रखते हैं तो उस समय हम संकल्प दे दें कि आज हम सकाश देंगे इस रूप में संगठित मिलकर के, और उसी प्रकार की कमेंट्री हो, उसी प्रकार का संकल्प जब दिया जाता है तब फिर धीरे धीरे उस स्वरूप से संगठित रूप से करना आसान हो जाएगा। इसलिए ये छह तरीका जो करना है ये संगठित रूप में करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अधिक दिखाई देगा। नहीं तो जैसे सकाश ग्रुप में है, हम संकल्प अच्छा है हमारा कि हमें सकाश देना है, लेकिन कोई फरिश्ता बनकर दे रहा है, भक्तों को दे रहा है, कोई दुखी परेशान आत्माओं को दे रहा है, तो वो लिमिटेड पावर हो गई। लेकिन अगर संगठित रूप में हम सब फरिश्ते बन करके उन भक्तों को, तो उनको साक्षात्कार होने लगेगा। जो बाबा कहते हैं आपके द्वारा सर्वशक्तिमान का साक्षात्कार होगा, और वो कहेंगे गाएंगे आ गई शक्तियां आ गई, जो बाबा कहते हैं ना, या यही है यही है यही है, ये आवाज सभी तो जब संगठन में होगा तभी तो ये आवाज निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा। तो इसलिए संगठन का विशेष महत्व है कि जब हम सकाश देते हैं तो आज कौन से स्वरूप से हमें देना है, तो रोज क्या हो जाएगा, अलग अलग रूप से हम करेंगे तो एक तो क्रिएटिविटी रहेगी, बोर नहीं होंगे। रोज एक ही प्रकार से देंगे तो कई बार बोर हो जाते हैं कि अब आगे कैसे सकाश देना होता है। तो सकाश जो क्लैरिटी नहीं है अब तक, सकाश के विषय में कोई शुभ भावना के साथ सकाश दे रहा है, कोई लाइट माइट दे रहा है, कोई किस रूप में दे रहा है, कोई कुछ रूप में दे रहा है, तो इसीलिए बाबा की मुरली के हिसाब से ये छह प्रकार जो बाबा ने बताए। तो जब संगठित रूप में हम संकल्प लेते हैं कि आज इस रूप में हम सब करेंगे तो उससे हमें हमारी स्थिति भी मजबूत होगी क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है, और हमारे साथ साथ जिसको हम दे रहे हैं उनको भी अनुभव होगा, फील होगा, है कि नहीं। तो इसलिए संगठित रूप से एक ही संकल्प में स्थित होकर के फिर एक ही प्रकार के लोगों को भी हमें देना है, जैसे कहा फरिश्ता बनकर भक्तों को दे रहे हैं, लाइट माइट हाउस बनकर के जैसे भटकती आत्माओं को हम दे रहे हैं, फिर जब शुभ भावना शुभ कामना है तो जैसे सारे समाज के अंदर सारे उस वातावरण के हम अंदर ये फैला रहे हैं, फिर साइंस दान वालों को देना है तो उस समय एक साथ मिल करके उनको देवे ना, तभी तो कार्य के अंदर जोर भरेगा। अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं हर एक अपनी अपनी रीति से, इसलिए वो जोर नहीं भर रहा है, जो फोर्स भरना चाहिए वो फोर्स नहीं भर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पावर ऑफ सकाश ग्रुप जो है सकाश देने के कार्य के लिए ही बना हुआ है, और इसीलिए जब सकाश देने के कार्य, लेकिन पावर ऑफ सकाश में भी जब हम संगठित रूप में एक ही संकल्प में, तो जैसे हर रोज के लिए आते हैं कि भाई आज किस रूप में बैठना है, आज किस रूप में, और उसी अनुसार की कमेंट्री हमारी हो तो फिर सहज हो जाएगा। तो पावर ऑफ सकाश के साथ भी जो जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी जैसे सहज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, स्वमान तो यही है ना कि भई आज हमें सकाश किस रूप में देनी है, तो लाइट हाउस माइट हाउस, तो मैं लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित हो जाऊं, उस स्वमान में स्थित हो जाऊं, फिर फरिश्ता रूप में देना तो मैं फरिश्ता बन जाऊं, झाड़ के तने में जब बैठना है तो मैं कल्प वृक्ष की वो आदि रत्न आत्मा हूँ, त तने में बैठी हूँ, बाप दादा के साथ बैठी हूँ, ये फील करना है ना, बीज स्वरूप में इस तरह से। बहुत अच्छी बात है, इसी को तो रूहानी उड़ान भी कहते हैं ना, और रूहानी उड़ान तो भरनी ही है। रूहानी उड़ान के आधार से ही हम फरिश्ता बन करके अनेक आत्माओं तक भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये छह प्रकार ये रूहानी उड़ान ही है, एक ही समय। हाँ, समय भी एक ही, संकल्प भी एक ही, स्थिति भी एक ही, और उस रूप से जब करते हैं, जैसे भाई इंटरनेशनल योग होता है तो उस समय जैसे शांति के वाइब्रेशंस देते हैं ना, तो उस समय भी अगर हम टावर ऑफ साइलेंस बन करके जैसे शांति का प्रवाह फैलाएंगे सब मिल करके एक साथ में, तो नेचुरल है वो जाएगा, उस रूप में कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, आप क्या बोल रही हैं? इसीलिए तो कहा ना, फरिश्ता माना ही सूक्ष्म स्वरूप है ना, सूक्ष्म शरीर के साथ। तो इसीलिए पहला तरीका जो बाबा ने बताया वो फरिश्ता स्वरूप क्यों बताया, कि यही अंतर्वाहन है, क्योंकि अभ्यास ये है शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर में है ना, तो एकदम अशरीरी नहीं बनना है, सूक्ष्म शरीर वाला पहले लो और फिर धीरे धीरे आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर परम धाम में जाओ तो सहज हो जाएगा। अगर लक्ष्य मुझे है तो फिर उस लक्ष्य को सामने रखने से क्या होगा, ये देह से डिटैच होना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है, खाली बाबा को याद करना, तो फिर देह से डिटैच होना मुश्किल हो जाता है, है ना। इसलिए दर्द होने लगता है। हाँ, जबरदस्ती नहीं करो अपने आप को, जबरदस्ती नहीं करो, अपने मन को पहले तैयार करो उसके लिए। तो दिन भर में भी भाई आपको शाम को बैठना है तो दिन भर में आप अपने आप को तैयार करो, तैयारी करनी जरूरी है ना। और अशरीरी जैसे जैसे होते जाएंगे तो शरीर का दर्द भी समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर का दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे आप किसी को याद करने के लिए ऐसे बैठ गए, ऐसे जब बैठ जाते हैं या हाथ खड़ा की खड़ा है, सुन्न हो गया, जैसे आप कॉन्शियस में आते हैं फिर क्या करते हैं, तो सुन हो गया ना, तो कैसे सुन हुआ, इसका फीलिंग नहीं थी इसलिए सुन्न हो गया, क्योंकि आप ऐसे बैठ गए और जो विचारों में जो लक्ष्य के अंदर बैठे थे और उस व्यक्ति की याद में बैठे थे, तो बैठे बैठे उसके पास पहुंच गए तो ये शरीर से डिटैच हो गए, इसलिए जब ये सुन्न हो गया तो आपको पता भी नहीं चला। लेकिन जैसे वापस उसकी याद से वापस आते हैं उसके बाद लगता है सुन्न हो गया, तो पहले कहां पता चला, पहले कहां पता चलता है, तो सुन्न होता है ना। पैर कभी सो गया, सुन्न हो गया ना, क्यों सुन हो गया, क्योंकि हम इतना मगन थे कि कोई व्यक्ति की याद में कि वो पैर ऐसे कैसे रह गए पता ही नहीं चला। फिर धीरे से करके झटकना पड़ता है, ऐसे पैर हिलाना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे करना करते हैं ना, अनुभव है ही ना सबको, तो उस समय थोड़ी दर्द होता है कि मेरे पैर में दर्द है, थोड़ी दर्द होता है नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अभ्यास नहीं, मन को उस रीति से तैयार नहीं किया है, इसीलिए ऐसा होता है। क्या हुआ? सात्विक आहार में क्या आता है? सात्विक आहार में तो फल फूल और दूध ही होते हैं, पका हुआ भी नहीं होता है, वो एकदम सात्विक माना गया है। इसलिए बाबा शुरू के दिनों में जब भट्टी रखते थे तो भट्टी में खाली दूध और फल ही दिया जाता था, पकी हुई रसोई भी सात्विक में नहीं आती है, है ना? वो भी राजसिक हो जाती है। सात्विक जो है, जो माना गया है, जो बाबा शुरू में साकार बाबा जब भट्टियां रखते थे तो उस समय जो देते थे खजूर, दो खजूर ताकत देने के लिए, दो केला और दूध, बस इतना ही मिलता था। आज भी इसीलिए 18 जनवरी पर आपको उतना ही मिलता है। ये सात्विक आहार है एकदम सा, उसमें पकी हुई रसोई भी नहीं आती है सात्विक आहार में। हाँ, वो दूध पापड़ बिस्किट ये सब राजसिक में ही आता है, वो भी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका सर्कमस्टेंसेस कैसा है वो आपको देखना है। इसलिए मैं उसके लिए नहीं, क्योंकि बाबा ने श्रीमत दी हुई है, हर बात की श्रीमत है ही है। बाकी मनुष्य कई बार दूसरों को पूछ करके सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई मुझे यहां से अगर डायरेक्शन मिलेगा तो मैं जो खाऊंगी उसका आधा पाप, इसीलिए मैं डायरेक्शन नहीं देती हूं उस बारे में, क्योंकि विवेक शक्ति हरेक को भगवान ने दी है, है ना? आप जो करो आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, दूसरे को भागीदार नहीं बनाओ, दूसरों को भागीदार नहीं बनाओ। यही मैं, क्योंकि बाबा ने हर बात की श्रीमत हमें मुरली में दिया हुआ है कि नहीं? इसीलिए जो करो आप खुद अपने विवेक को यूज करके करो, और उसके लिए जो भोगना होगा वो आपको खुद को भोगना होगा, दूसरे को भागीदार बना करके उसको भागीदार, वो भोगना के भागीदार क्यों बनाए हम? इसीलिए बाबा ने इतनी अच्छी श्रीमत हमें दी है, तब कहा कि सात्विक में तो पकी हुई रसोई भी नहीं आती है, वो सात्विक है एकदम। ठीक है, शुभ भावना, अच्छे संकल्प, अच्छे शुभ संकल्प, जितना शुभ संकल्प हम करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, स्वमान में स्थित होकर के जो संकल्प फैलाते हैं, किसी आत्माओं के प्रति जो अच्छे संकल्प करते हैं, वो शुभ भावना, शुभ कामना। भावना हमेशा संकल्प से जुड़ी है, तो शुभ संकल्प जितना होगा हमारा, सकारात्मक संकल्प जितना होगा, उच्च विचार जितना होगा, उतनी हमारी भावना अच्छी प्रवाहित होगी ही, क्योंकि वो संकल्पों के माध्यम से ही वो भावनाएं प्रवाहित होती है। ठीक है, चले सब तैयार है चलने के लिए अभी? अच्छा, तो जैसे जैसे हम कमेंट्री देते जाएंगे, कमेंट्री भी हम उसी रीति से देते जाएंगे, एक एक बात को लेते जाएंगे, और उसमें कुछ क्षण स्थित होना है, और उसमें स्थित होकर के उसको फील करना है, महसूस करना है, और वो वाइब्रेशंस को भी फैलाना है। पहले गीत बजाओ। हम सभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प की पट्टी बांधते हैं,
सर्वप्रथम अपने अंतिम स्वरूप अंतिम फरिश्ता स्थिति के ड्रेस को इमर्श करते हैं। और मैं आत्मा इस स्थूल देह से परे होती हूँ और अपनी सूक्ष्म संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूँ। यह अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस एकदम हल्की चारों ओर लाइट के प्रभा मंडल वाले उसमें मैं स्वयं को देखती हूँ। यही अंतिम स्थिति मेरा अंतर्वाहन है। और बाप दादा के संग अंतर्वाहन द्वारा चक्कर लगाते हैं। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में और मैं बाबा के संग नमः शाम के समय चलते हैं भक्त आत्माओं के पास। मंदिरों में भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, देवताओं को भी परमात्मा समझ पुकार रही है। बाबा के संग उन भक्त आत्माओं को शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार करा। हस्तात्माएं शिव बाबा का साक्षात अनुभव करे। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को पहचाने। यही है बाबा के छत्र छाया को महसूस करें। धीरे धीरे चलते हैं, और लाइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। लाइट माइट की सकाश दुखी परेशान आत्माओं को दे रहे हैं। किसी को शक्ति चाहिए, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। किसी को साहस चाहिए, उन्हें साहस प्रदान करते हैं। किसी को खुशी चाहिए, लाइट हाउस बनकर खुशी के प्रकंपन देते हैं। लाइट और माइट की सकाश से उन आत्माओं को आत्मतृप्ति महसूस हो रही है। धीरे धीरे चलते हैं अपने अव्यक्त वतन में, बाप दादा के संग। और अव्यक्त वतन से बेहद की स्थिति में स्थित होकर सारे संसार के ग्लोब पर शक्ति की किरणों को फैला रहे, संगठित रीति से विश्व का ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है, हर स्थान को हर आत्मा को आनंद की, प्रेम की प्रकाश दे रही। बेहद की स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर आत्मा को न्यारे और प्यारे होकर देना है, देना है, देना है। धीरे धीरे परमधाम जाते हैं, अव्यक्त वतन में अव्यक्त ड्रेस को छोड़ करके परमधाम की ओर उल्टा वृक्ष है, और उस वृक्ष के तने में बीज रूप बाबा के संग स्वयं को देखती हूँ, संगठित रूप बीज बाबा से सारे वृक्ष के टाल टालियों को, पत्तों को आत्मशक्ति का पोषण मिल रहा है, मैं आत्मा कितनी न भाग्यवान बीज बाबा से का पोषण लेते हुए सारे वृक्ष के पत्तों पत्तों तक इस प्रकाश प्रवाहित हो रही है। मुझ आत्मा में फुल स्टॉक जमा है। और बाबा से रिसीव करते हुए स्वयं को भरपूर स्थिति में अनुभव करते हम तने से सर्व को ये प्रकाश प्राप्त हो रही है। हम ही वो पूर्वज है धीरे धीरे मन को शांत निसंकल्प करते हुए शुद्ध संकल्प में स्थित होना है। एक के अंत में समा जाना है, हो जाना है। बाबा की मधुर याद में समाये हुए रहम दिल बन अपनी शुभ भावना शुभ कामना के प्रकंपन सारे संसार की आत्माओं तक पहुंचाना है। शुद्ध स्मृति शुद्ध वृत्ति से पावनता के प्रकंपन सर्व तक पहुंचाना और अपनी शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल को
प्रकृति को भी अपने शुद्ध भावनाओं से सकाश देने है। पशु पक्षियों को शुद्ध वाइब्रेशन की प्रकाश देनी है। साइंस दानों को भी जो सुख के साधन बनाने के प्रयत्न में लगे परंतु अंत में मनुष्य को दुख ही मिलता है, ऐसे साइंस दान की बुद्धि को प्रकाश देने के लिए मैं साइलेंस का टावर बन जाती हूँ। ऊंची स्थिति अशांति स्तंभ बन जाती। शांति स्तंभ बनकर साइंस दानों को भी सत्यों की सुख सुंदर दुनिया के सुख के साधन बनाने की प्रकाश देती। निर्बल आत्मा को बल देना शक्तिहीन आत्माओं